दानियल अध्याय 10। अब अध्याय 10 में दानियल अध्याय 10 पद 1 से लेकर 3 तक। फारस देश के राजा कुसरू के राज्य के तीसरे वर्ष में दानियल पर, जो बेलशसर कसदी उपनाम भी कहलाता है, एक बात प्रकट की गई, और वो बात सच थी कि बड़ा युद्ध होगा। उसने इस बात को बूझ लिया और उसको ये देखी हुई बात की समझ आ गई। उन दिनों में दानियल 3 सप्ताह तक शोक करता रहा। उन 3 सप्ताह के पूरे होने तक मैंने ना तो स्वादिष्ट भोजन किया और ना मांस या दाक मधु अपने मुंह में रखा और ना अपनी देह में कुछ तेल लगाया। अतः फिर से परमेश्वर की बाट जोने का समय। अपनी देह का इनकार करके उन्होंने ना तो मांस खाया ना दाक मधु पिया। उन्होंने सिर्फ शाकाहारी भोजन ही किया। और 21 दिन बाद दानियल अध्याय 10 पद 4 से लेकर 7 तक। फिर पहले महीने के 24वें दिन को, जब मैं हिदकेल नाम नदी के तट पर था, तब मैंने आंखें उठाकर देखा कि सन का वस्त्र पहने हुए और उफास देश के कुंदन से कमर बांधे हुए एक पुरुष खड़ा है। उसका शरीर फिरोजा के समान, उसका मुख बिजली की नाई, उसकी आंखें जलते हुए दीपक की सी, उसकी बाहें और पांव चमकाए हुए पीतल के से, और उसके वचनों का शब्द भीड़ों के शब्द का सा था। उसको केवल मुझ दानियल ही ने देखा और मेरे संगी मनुष्यों को उसका कुछ भी दर्शन ना हुआ, परंतु वे बहुत ही थर थराने लगे और छिपने के लिए भाग गए। संकट के समय साथ छोड़कर भागने वाले दोस्त, दानियल अकेला रह गया था। वो उस मनुष्य का वर्णन करता है कि वो सन का वस्त्र पहने और कुंदन से कमर बंधे था। ये वर्णन ठीक वैसा ही है जैसा यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य के अध्याय 1 में यीशु मसीह के विषय किया था। अगर आप इन दोनों विवरणों को एक साथ रखें तो आपको ऐसा लगेगा कि वे एक ही व्यक्ति का वर्णन कर रहे हैं। यूहन्ना ने कहा कि उसने घूमकर सोने की 7 दीवटों के बीच में एक मनुष्य को देखा, जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन वरन पाले के से उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। अतः आपको समानांतर विवरण मिलता है, और चूंकि ये समान विवरण है इसलिए ज्यादातर बाइबल के विद्वान इस बात को मानते हैं कि यूहन्ना ने यहां जिसको देखा था वो कोई और नहीं परंतु यीशु मसीह ही था। पद 8 में इस मनुष्य को देखने के बाद दानियल की प्रतिक्रिया उनके विचार की पुष्टि करती है। दानियल अध्याय 10 पद 8। तब मैं अकेला रहकर ये अद्भुत दर्शन देखता रहा, इससे मेरा बल जाता रहा। मैं भयउत्तर हो गया और मुझ में कुछ भी बल ना रहा। उसको देखने का दानियल पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। उसका बल जाता रहा, वो बहुत कमजोर हो गया और उसका चेहरा मुरझा गया। हर शख्स जो एक सच्चा दर्शन देखेगा उसका यही हाल होगा। यशया ने कहा, उज्जिया राजा के मरने के वर्ष में मैंने परमेश्वर को ऊंचे पर उठते और सिंहासन पर बैठते हुए और मंदिर को उसकी महिमा से भरे हुए देखा। तब मैंने कहा, हाय हाय, मैं नाश हुआ, क्योंकि मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच रहता हूं। परमेश्वर का दर्शन पाकर हम हमेशा अपने आप को सही ज्योति में देख पाते हैं। क्योंकि मैं अपने आप को दूसरों के तुलनात्मक प्रकाश में देखता हूं, इसलिए अपनी सच्चाई को नहीं देख पाता और कहता हूं, देखो मैं तो इतना बुरा नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी तुलना दूसरों के साथ करता हूं। परंतु ध्यान दीजिए कि यीशु ने कहा था, तुम अपनी तुलना दूसरों के साथ करके गलती करते हो। अपने आप को सही रोशनी में देखने के लिए है, मुझे अपने आप को यीशु मसीह की रोशनी में देखना चाहिए, अर्थात वैसे जैसे परमेश्वर मुझे देखता है, और अपने आप को यीशु मसीह की रोशनी में देखने पर मैं केवल अपना सर झुकाकर यही कह सकता हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं सड़ाहट से भरा हूं, मैं अधर्मी हूं, मैं अपवित्र हूं, ओ परमेश्वर मुझे छोड़ दे, मैं एक पापी मनुष्य हूं। जैसे पत्रस ने कहा था, मेरी सुंदरता और मेरा रूप बदल गया और मैं कमजोर था, मैं मूर्छित था। दानियल अध्याय 10 पद 9। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना और जब वो मुझे सुन पड़ा तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पड़ा रहा। ये एक तरह से उसका शोधन था, वो औंधे मुंह गिर गया था। यूहन्ना ने जब मसीह का दर्शन देखा था तो वो औंधे मुंह ऐसा गिरा जैसे वो मर गया हो। यूहन्ना पर भी वैसा ही असर हुआ था जैसा दानियल पर यहां हुआ। अब जो कठिनाई इस चमकदार महिमामय आकृति के साथ हुई, जैसे दानियल ने यीशु मसीह के रूप में देखा था, वो पुस्तक के इस अंश के अगले हिस्से में आती है। दानियल अध्याय 10 पद 11। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले। ठीक है, दानियल अध्याय 10 पद 10 से लेकर 14 तक। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ और मुझे उठाकर घुटनों और हथेलियों के बल थरथराते हुए बैठा दिया। तब उसने मुझसे कहा, हे दानियल, हे अति प्रिय पुरुष, जो वचन मैं तुझसे कहता हूं उसे समझ ले और सीधा खड़ा हो, क्योंकि मैं अभी तेरे पास भेजा गया हूं। जब उसने मुझसे ये वचन कहा तब मैं खड़ा तो हो गया, परंतु थरथराता रहा। फिर उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल, जो मुख्य प्रधानों में से है, वो मेरी सहायता के लिए आया, इसलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। उसने कहा, मैं एक बार फिर तुझे ये समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों के साथ क्या होगा। अभी ये समझ में नहीं आता कि फारसियों का राजकुमार, जो बेशक शैतान है, वो सांसारिक शासकों की शक्ति है। आपको याद होगा, शैतान ने यीशु से कहा था, संसार का सारा राज्य मेरा है, मैं जिसे चाहूं उसे दे सकता हूं। और इसी तरह एहेस्केल की पुस्तक में सोर के राजा का उल्लेख है। शैतान सोर के राजा के द्वारा बोलता है। अतः यहां शैतान का विवरण राजकुमार के तुल्य किया गया है, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से अर्थात उन शैतानी आत्माओं से जो संसार की सरकार के ऊंचे पदों पर विद्यमान है उनसे है। वास्तव में शैतान आप में उतनी रुचि नहीं रखता जितनी संसार के अधिकारियों और नेताओं में रखता है, जिनके द्वारा वो लोगों पर संसार के हाकिमों के द्वारा राज आज्ञा निकालकर असर डाल सकता है। वो हमारे पीछे अपने छोटे दुर्बल योद्धाओं का दस्ता भेजता है जिनके साथ हमारा वास्तव में कोई मेल नहीं। आप भाग्यवान हैं कि आपका सामना कभी उससे सीधा नहीं हुआ, आपको कभी मौका नहीं मिला है। इस दुनिया में जो सबसे बड़ा है उससे बड़ा वो है जो हमारे अंदर है। अतः परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम मसीह के द्वारा जयवंत हैं। वे दुनिया के नेताओं या अधिकारियों के मनों में काम कर रहा है। तभी वो मनुष्य जो दानियल के पास भेजा गया था वो उस वक्त भेजा गया था जब दानियल ने अपना उपवास शुरू किया था, लेकिन 21 दिन तक उसे रोका गया जब तक कि मिकाएल महान राजकुमार ने आकर उसे ना छुड़ाया। अब ऐसा प्रतीत होता है कि मिकाएल हमेशा शैतान से लड़ता रहता है और वो उसके लिए अजय है। मूसा के शरीर के लिए वे आपस में विवाद कर रहे थे। आपको याद है यहूदा की पुस्तक में जब मिकाएल मूसा के शरीर के लिए शैतान से विवाद कर रहा था, मिकाएल ने उस पर कोई भी दोष लगाने की हिम्मत नहीं की बल्कि इतना कहा, परमेश्वर तुझे डांटे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अंतिम बड़े युद्ध में मिकाएल बड़ा राजकुमार शैतान के और उसकी सेना के विरुद्ध खड़ा होकर लड़ता है। अतः ये युद्ध मिकाएल और शैतान के बीच में होगा। यहां ये संदेश वाहक स्वर्गदूत बंधुआ बना लिया गया था तब मिकाएल ने आकर उसे छुड़ाया। अब वे जो इस दर्शन के अनुवाद में कहते हैं कि उसने मसीह को देखा था, वे दसवें पद में एक वचन को बहुवचन में बदल देते हैं, क्योंकि वो कहता है फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ। अब इसे पढ़ते समय हम ये अनुमान लगाते हैं कि वो हाथ उसका था जिसे उसने देखा, परंतु वे जो इसे मसीह के रूप में अनुवाद करते हैं वे कहते हैं कि मसीह आया था, परंतु दूसरे संदेश वाहक भी साथ थे, क्योंकि अध्याय 12 में जब वो आने वाले महाक्लेश के बारे में संवाद का उल्लेख करता है तब वहां संवादकर्ता एक से अधिक है। इन सब के अंत में कितना समय होगा, उनके बीच में वार्तालाप चलता है। अतः वहां एक दूसरा संदेश वाहक स्वर्गदूत मसीह के साथ है जिसने दानियल को छुआ था और उसे उसके पैरों पर खड़ा किया था। यही वो स्वर्गदूत है जो अध्याय के अंत तक दानियल से बातें करता है। मैं इस विषय में सिद्धांत स्थापित नहीं करना चाहता, परंतु ये तो निश्चित है कि ये यीशु मसीह का ही वर्णन है जैसा कि प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में किया गया है। अतः मैं अपना रुझान उसी दिशा में रखना चाहता हूं और पद 10 में संवादकर्ताओं को बहुवचन में स्वीकार करता हूं। परंतु इसमें संदेह नहीं कि दानियल से बात करने वाला व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि मसीह यीशु ही है। फिर भी ये अपने अपने विचारों का मामला है और आप जैसा चाहे वैसा सोच सकते हैं। परंतु महत्वपूर्ण बात तो ये थी कि दानियल को उन बातों की समझ प्रदान की गई थी जो अंत के दिनों में होने वाली थी। दानियल अध्याय 10 पद 15 और 16। जब वो पुरुष मुझसे ऐसी बातें कह चुका तब मैंने भूमि की ओर मुंह किया और चुप का रह गया। तब मनुष्य के संतान के समान किसी ने मेरे होंठ छुए। आप देखिए यहां एक और इंसान भी है। दानियल अध्याय 10 पद 16 में आगे लिखा है, और मैं मुंह खोलकर बोलने लगा और जो मेरे सामने खड़ा था उससे मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, दर्शन की बातों के कारण मुझको पीड़ा सी उठी और मुझ में कुछ भी बल नहीं रहा। इस दर्शन के कारण मैं हिल गया, मुझे कुछ ना दिखा, मैं और कुछ नहीं देख सकता, मैं पूरा हिल गया। दानियल अध्याय 10 पद 17। सो प्रभु का दास अपने प्रभु के साथ क्यों कर बातें कर सके, क्योंकि मेरी देह में ना तो कुछ बल रहा और ना कुछ सांस ही रह गई। याद कीजिए, यूहन्ना अपने घुटनों पर मृत के समान गिर गया था और इसलिए वो कहता है, मेरे पास बल ना रहा, मेरे सांसें नहीं थी, मैं समाप्त हो गया था। दानियल अध्याय 10 पद 18। तब मनुष्य के समान किसी ने मुझे छूकर, अब यहां देखिए कि एक से अधिक व्यक्ति उपस्थित है। दानियल अध्याय 10 पद 18 और 19। फिर मेरा हियाव बंदाया और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बांधा रहे। विश्वास का महान वचन। दानियल अध्याय 10 पद 19 में आगे लिखा है, जब उसने ये कहा तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरे हियाव बंधाया है। दानियल ने कहा, मैं तेरे साथ बात नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत है, तू जानता है, मैं समाप्त हुआ, मुझ में और बल नहीं। और इसलिए उसने उसे छुआ और कहा, बलवंत हो जा। और दानियल ने कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। तब उसने कहा, क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? दानियल अध्याय 10 पद 20। क्या तू जानता है कि मैं किस कारण तेरे पास आया हूं? अब मैं फारस के प्रधान से लड़ने को लौटूंगा, मुझे वापस युद्ध में जाना है, मुझे फारस के प्रधान या राजकुमार से लड़ना है। दानियल अध्याय 10 पद 20 में आगे लिखा है, और जब मैं निकलूंगा तब यूनान का प्रधान आएगा। अतः फारस का राजकुमार या प्रधान यूनान के राजकुमार या प्रधान के अधीन हो जाएगा। दानियल अध्याय 10 पद 21। और जो कुछ सच्ची बातों से भरी हुई पुस्तक में लिखा हुआ है वो मैं तुझे बताता हूं, उन प्रधानों के विरुद्ध तुम्हारे प्रधान मिकाएल को छोड़ मेरे संग स्थिर रहने वाला और कोई भी नहीं है।